राग द्वेष के नाश के लिए सबसे बढ़कर है भगवान की अनन्य भक्ति। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये हनुमान वह मेरा अनन्य भक्त है, जिस इसके पहले समदर्शी मोई कह सबको, मुझे समदर्शी कहते हैं पर मैं भक्तों का विशेष प्रिय हूं। कहने के लिए मुझे समदर्शी कहते हैं, मैं समदर्शी हूं नहीं, भक्तों में विशेष प्रेम रखता हूं। जो कुछ चराचर देखने में आते हैं उन्हें परमात्मा का स्वरूप समझकर व्यवहार करो। आप परमात्मा का रूप नहीं समझते हो, किसी के साथ राग करते हो, किसी के साथ द्वेष करते हो, लेकिन आप परमात्मा का रूप यदि उसको समझोगे तो राग द्वेष कैसे होगा। इसलिए सर्वत्र परमात्मा को समान भाव से देखो। ऐसा न हो सके तो भगवान के नाम का जप करो, उस जप से आपकी बुद्धि बदल जाएगी। प्रश्न है, एकांत में जाकर बैठते हैं लेकिन मन में ऐसे संकल्प आते हैं कि किसी के साथ राग और किसी के साथ द्वेष हो ही जाता है। उत्तर, अच्छा संकल्प आने दो, जो कुछ संकल्प आवे उसी को ही परमात्मा का रूप समझ लो, और ऐसा समझो कि भगवान के संकल्प हैं, भगवान संकल्पों के रूप में आते हैं। जब हम नारायण समझने लगेंगे तो संकल्प भी भाग जाएंगे। यह तो आपके प्रश्न का जवाब है। दूसरी बात है बद्रिक आश्रम जाने वालों के लिए। यूं तो भगवान सर्वत्र विराजमान है ही, परंतु बद्रिक आश्रम में नर नारायण रूप से भगवान ने तपस्या की है। हम चले तो भगवान को अपने साथ में लेकर चले हैं, चलते हैं तो वे चलते हैं, खाते हैं तो वे खाते हैं, ठहरते हैं तो वे ठहरते हैं। जो कोई आपका साथी हो वो तो उसको साथ नहीं छोड़ना चाहिए ना। बीमार हो जावे उसकी सेवा करो, जो उसे छोड़कर चले जाते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण जी परम धाम को पधार गए उस समय पांडव लोग तीर्थ यात्रा को गए। तीर्थ यात्रा करते उत्तराखंड में गए, बद्री का आश्रम लांग कर गौरी शंकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। द्रौपदी बर्फ पर गिर गई। भीमसेन ने पूछा, महाराज आप कहा करते हैं कि बिना पाप के मृत्यु नहीं होती है, फिर द्रौपदी की मृत्यु क्यों हो रही है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो द्रौपदी के ये पांचों पति थे अपने, पर यह अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए द्रौपदी मर रही है। फिर सहदेव गिरा तो कहा, महाराज सहदेव कैसे गिर गया। बताया, इसके अभिमान था कि मेरे समान कोई विद्वान नहीं है। फिर नकुल गिरा कि महाराज नकुल तो सबसे सीधा साधा है, ये कैसे मर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, इसके सुंदरता का अभिमान था। अर्जुन गिरा तो बताया कि इसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई थी इसलिए मर रहा है। अब भीमसेन का नंबर आया, चिल्लाया कि महाराज मैं कैसे मर रहा हूं, मैंने तो द्रौपदी की बात को लेकर 100 धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा था, मैंने आप जैसे धर्मात्मा के लिए राज्य खोल दिया था, आपको राजगद्दी मिली, मेरे क्या कारण हुआ, मैं कैसे मर रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, हमने तुमको कई बार समझाया, अपने बल का बखान अपने मन से और अपने वाणी से मत करो, लेकिन तुम ये मानते थे कि मेरे समान कोई बल वाला नहीं है, इसलिए तुमको मरना पड़ेगा। अब एक युधिष्ठिर महाराज रह गए। इंद्र उनके लिए रथ लेकर आए, उस पर युधिष्ठिर सवार हो गए। युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है। उसने कहा, इंद्रदेव, ये कुत्ता मेरे साथ बहुत देर से आ रहा है, अब मैं इस कुत्ते को कहां छोड़ूंगा, ये तो मेरे साथ चलेगा। इंद्र ने कहा, आप तो धर्मपुत्र हैं युधिष्ठिर, आपको पता है कुत्ता पालने वाला भी नरक में जाता है, तो साक्षात कुत्ता कभी स्वर्ग में जाएगा? कैसी बात करते हो, कुत्ता नहीं जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि ये तो मेरा साथी है, मैं इसको छोड़कर कैसे जा सकता हूं, अब ये तो नरक में जाएगा, मुझे आप स्वर्ग में ले जाओ कैसे, संभव नहीं है, ये कुत्ता नहीं जा सकता, तो आप अपने रथ को ले जाओ, ये तो मेरे साथ चलेगा, मुझे ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने कहा, सोच समझ कर बात करो युधिष्ठिर, हम कोई स्वर्ग की मर्यादा को थोड़ी तोड़ने देंगे। युधिष्ठिर ने कहा, एक कुत्ते की जगह नहीं है क्या? नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएंगे? तुम्हारी जगह है तो मेरी जगह में से थोड़ी जगह इसको दे देना, कि वहां ये हिस्सा नहीं होता है, तो फिर मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, क्यों? मेरी इच्छा, कोई पाप का फल होता है उसको भोगने में तो भोगता की इच्छा नहीं चलती, लेकिन पुण्य का फल होता है उसका त्याग तो वो कर ही सकता है, मैं स्वर्ग का त्याग करता हूं। इतना कहना हुआ कि वहां साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए और कहने लगे, युधिष्ठिर, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुत्ता बने थे, तुम्हारी विजय हो, तुम स्वर्ग में जाओ। आप लोग बद्री नारायण जाते हो, आपका साथी बीमार पड़ गया, आप उसको छोड़ करके चले जाओगे कि हम तीर्थों का लाभ ले लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बद्रीनारायण भगवान आपसे मुख मोड़ लेंगे, अपने जो आश्रित है, अपना जो साथी है, उसको त्याग दो और आप चले जाओ। बद्री जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, कैसा व्यवहार है, यदि आपको वापिस बीच में से ही आना पड़े, उस साथी का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसकी सेवा के लिए बद्रीनारायण जाने के बीच से ही भी वापिस आना पड़े, तो आपको बद्रीनारायण जाने का फल मिलेगा। आप लोग अपना व्यवहार देखो तो सही, कैसे करते हो। हम देखते हैं लोग बद्रिकाश्रम जाकर आते किंतु उनका वही व्यवहार होता है, ऐसी स्त्रियों की दशा है, चारों धाम करती हैं, अमुक तीर्थ में जाएंगी बड़ा उत्साह रखती है, लेकिन घर में आती है तो फिर लड़ाई झगड़ा करती है। तीर्थों में अच्छा व्यवहार करके घर में जाओ, स्वार्थ को त्याग कर व्यवहार करो, मन में ऐसा स्वभाव रखो कि मैं कष्ट भले ही सह लूं, दूसरे को आराम पहुंचे। आप लोग मनुष्य होकर यदि ये बात काम में नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? जो तो को काटा बुवे ताही बोवतु फूल, बस इसके आगे का मत याद करना कि उसको तो कांटा ही है तो ही फूल को फूल, ये मत देखना। अपने तो इतना ही देख लो, जो तो को काटा बुवे तो ही बोवतु फूल। अपनी शक्ति के अनुसार दान करो। तीर्थों में जो यज्ञ दान जप तप किया जाता है वह अनंत गुणा होता है, इसी प्रकार जो वहां पाप करता है तो वो भी अनंत गुणा होता है। देवी संपदा के जो गुण बताए हैं उनका सेवन करना चाहिए। प्रमाद, आलस्य, भोग, पाप, दुर्गुणों का एकदम त्याग करना चाहिए। रास्ते में कोई तीर्थ आ जाए तो स्नान करो, संत महात्मा मिल जाए उनकी सेवा करो, असली सेवा तो उनकी बताई हुई बातों का पालन करना है। झूठ नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पुरुषों के लिए दूसरों की स्त्री को माता के समान समझना, मन इंद्रियों का संयमन करना, इसी का नाम तो तप है। नाम का जप करना, दिन भर आप लोग यहाँ रहते हो यह तप ही तो है। तप क्या है? संयम, खाने में संयम, सादगी में संयम, सादा भोजन। ये जो मेवा मिठाई है नरक में ले जाने वाली है। वस्त्र भी मोटे वही पहनो। जो मलिदा खाते हैं और मलिदा पहनते हैं उन्हें गलीदा पड़ते हैं। माल मलिदा, जो मलिदा खाते हैं और मलिदा पहनते हैं उनके गलीदा पड़ते हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु यदि हमारे से कोई सेवा नहीं बने तो कोई बात नहीं, पर किसी का अपकार नहीं हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, भला नहीं हो तो कोई बात नहीं। दया थारी छा कुताऊं पिंड छुड़ा, दो बातें याद रखनी चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को याद रखो, एक नारायण भगवान को याद रखो। मृत्यु तो पद पद पर है, देखो बद्री नारायण जाओ या किसी तीर्थ में जाओ या कोई बहुत बड़े सत्संग में जाओ, लौट के आओ तो ये मानना चाहिए कि अब हमारा नया जन्म हुआ है। पिछली कोई बातें उनको सबको भूल जाओ, किसी ने हमारे साथ कोई बुराई की भूल जाओ, पिछले जन्म की बात ही भूल जाओ। जैसे पिछले जन्म की बातें याद नहीं है, ऐसे इस जन्म में तीर्थ यात्रा से, सत्संग से पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और नए ढंग से अपना व्यवहार चालू करो। मृत्यु को याद रखने से पाप नहीं बनेगा और भगवान को याद रखने से कल्याण हो जाएगा। और दो बातें और भी याद रखो, क्या? संत मिलन और हरि भक्ति दुर्लभ जग में, ये सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। स्त्री पुत्र धन तो पापियों के भी होते हैं। संत मिलन और भगवान का भजन, ये दो बातें बड़ी दुर्लभ हैं। तीर्थों में आप जाओ तो तीन बातें याद रखो, धर्म, मोक्ष और काम, ये तीनों चीजें मिलती हैं। अर्थ तो यहाँ खर्च होता है इसलिए वो मिलता नहीं। इसमें दो की तरफ धर्म और मोक्ष की तरफ ध्यान रखना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, इसके लिए तो यही साधन है। जो कुछ अपने से बने, जो अनाथ हैं उनकी शरीर, मन, वाणी, धन से सेवा करो और परमात्मा की भक्ति, सत्संग, तीर्थों में स्नान करो, भगवान के नाम का जप कीर्तन करो। ऐसा मार्ग है, ये वैकुंठ से भी बढ़कर है। एक तरफ आपके लिए वैकुंठ है और एक तरफ भगवान का नाम है, सत्संग है, कीर्तन है, कि इन दोनों में से आप क्या चुनोगे? तो वैकुंठ को छोड़ करके अपने को तो भगवान का नाम जप और सत्संग वगैरह करना चाहिए, वैकुंठ से भी बढ़कर है। आज युधिष्ठिर महाराज नहीं है किंतु उनका नाम आज भी लोगों के जबान पर है। युधिष्ठिर का नाम लेने से मनुष्य के पाप दूर होते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं। वन पर्व में कथा आती है, राजा नहुष ने बड़ा पाप किया, इंद्राणी के पास जा रहा था। ऋषि ने रोका कि नहुष, इंद्राणी को तुम अपनी स्त्री बनाना चाहते हो, बड़ा अन्याय है। ऋषि ने घोर विरोध किया तो नहुष ने ऋषि के लात मार दी। तब ऋषि ने श्राप दिया, एक तो हम तुम्हारे भले की बात बोलते हैं और तुम हमको लात मारते हो, इससे संसार में ये बात फैलेगी कि कोई आदमी किसी को भली बात कहेगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प हो जाओ। अगस्त ऋषि ने कहा कि युधिष्ठिर से तुम्हारी बातचीत होगी तब तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं तो तुम सर्प पड़े रहोगे। तो ऋषि का दिया हुआ श्राप नहुष को सर्प बना दिया और युधिष्ठिर से उसकी बात हुई तब वो मुक्त हो गया। ऐसे युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उनका प्रत्येक चरित्र नीति और धर्म से ओतप्रोत है, इसीलिए उनको धर्मराज कहते हैं। उनके जीवन में तो एक अपवित्रता आई और उनका जीवन सारा पवित्र था। उस एक बार के मिथ्या भाषण से उन्हें कल्पित नरक दिखाया गया। एक झूठ के कारण उन्हें कल्पित नरक देखना पड़ा। हमारी समझ से तो ये बात भी इसलिए हुई है, युधिष्ठिर महाराज जैसे महापुरुष दुनिया को कुछ बताना चाहते थे, उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि देखो मैंने एक कल्पित झूठ बोला है, उसके बदले मुझे नरक मिला है। जो रात दिन झूठ बोलेंगे उनकी क्या दशा होगी, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने संभवतः उसी के लिए ही किया होगा। अपने लोगों को युधिष्ठिर का ये चरित्र देख करके रात दिन नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने में आपके द्वारा कोई झूठ तो बोला नहीं जाएगा, नाम जप करने में आपको कभी किसी को कड़वी बात बोलनी नहीं पड़ेगी। नाम जप करते रहोगे तो किसी का आपको अपमान करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कितना अच्छा ये अवसर है, नाम जप में लग जाओ। युधिष्ठिर महाराज की बड़ी महिमा आती है। एक साल का उन्होंने अज्ञातवास किया, दुर्योधन को पता नहीं लगा, सारी पृथ्वी छान डाली, कहीं युधिष्ठिर का पता नहीं चला। उसने पितामह भीष्म से पूछा कि महाराज युधिष्ठिर का कैसे पता चले। भीष्म ने कहा पांडव कहाँ हैं मुझे पता है। खूब ध्यान देकर सुनो, जिस देश में महाराज युधिष्ठिर होंगे उस देश में महामारी नहीं होगी, वहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, वहाँ गौओं की वृद्धि होगी, वहाँ धन धान्य बढ़ेगा, वहाँ की प्रजा धर्मात्मा होगी, वहाँ देवी कोप नहीं होगा, वहाँ की प्रजा सत्यवादी होगी, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाले परमाणु सबको धर्म में लगाने वाले होंगे। यह व्याख्यान भीष्म जी ने बड़े विस्तार से दिया। दुर्योधन को धर्म थोड़ा ही सीखना था, दुर्योधन तो अज्ञातवास में उनको ढूंढने की बात सोच रहा था। दूतों से पूछा, दूतों को कहा तुम जाओ, ये लक्षण कहां घटित होते हैं। दूत गए और समाचार बता दिए कि महाराज वो तो विराट नगर में है, क्योंकि जो लक्षण बताए वो सारे के सारे लक्षण वहीं उसी नगरी में घटते हैं, अतः युधिष्ठिर महाराज वहीं होने चाहिए। तब सोचा क्या करें, तो राजा विराट के यहाँ गायें बहुत थी, तो कौरवों ने उन्हें हरण करने का निश्चय करके दोनों तरफ से चढ़ाई की और फिर सब पता ही है, कथा पांडवों के अज्ञातवास कैसे हुआ और फिर वहां युधिष्ठिर महाराज को कैसे ज्ञान हुआ, फिर अर्जुन ने कैसे उनको भगा दिया, सब जानते हैं। तो एक व्यक्ति धर्मात्मा होता है, सबका सुधार कर देता है। महाभारत पांडवों के दिव्य चरित्र से भरा है, उसमें कई बातें छांट छांट कर आपको बताई है, ऐसा अपना जीवन होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरी, माखन चुरावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारे कारे गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, सामे वरन मेरो मदन गोपाल हरी, सामे वरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुवन ग्वाल, छोटी छोटी सखिया मधुवन ग्वाल, रास रसावे मेरो मदन गोपाल हरी, रास रसावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा तू ही नटवर तू ही नंदा, तू ही नटवर तू ही नंदा, तू ही है बाल मुकुंदा भजोरे बन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। आ सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। जो तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदिया बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। जो नदिया बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। काली दे में नाग ना हथियो, काली दे में नाग ना हथियो, फण फण नीरत करंदा भजोरे मन गोविंदा। फण फण नीरत करंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा वृंदावन में रास रसायो, वृंदावन में रास रसायो, नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुतारे प्रहलाद उबारे, ध्रुतारे प्रहलाद उबारे, आ नस नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा बाई के प्रभु गिरधर नागर, काटो नी जम का फंदा भजोर मन गोविंदा, काटो नी जम का फंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा, भजोर मन गोविंदा।